लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारियों ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में राहत अभियान की सख्त जरूरत है और उन्हें हमलों से बचाया जाना बहुत आवश्यक है। उनकी ओर से यह चेतावनी ऐसे समय जारी की गई है जब गुरुवार को गाजा सिटी में राहत सामग्री की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों के हताहत होने की खबरें हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी ने कहा कि गाजा में युद्ध बच्चों पर युद्ध साबित हो रहा है और गाजा युद्ध बच्चों के बचपन और उनके भविष्य का एक युद्ध है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
UNRWA के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान दुनिया भर में टकरावों में जितने बच्चों की मौत हुई है उससे कहीं अधिक बच्चे गाजा युद्ध में मौत का शिकार हो चुके हैं। एजेंसी के महाआयुक्त फिलिपे लजारिनी ने गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि गाजा में पिछले चार महीनों के दौरान लगभग 12,300 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न पदाधिकारियों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय पुकारों को दोहराया है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रमदान का पवित्र महीना शुरू होने के बावजूद गाजा में मौतें, बमबारी और रक्तपात का सिलसिला जारी है।
My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि मेरी प्रबलतम अपील रमदान की भावना का सम्मान करते हुए बंदूकों को शांत करने के लिए और जीवन रक्षक सहायता की आपूर्ति किए जाने के लिए है, और मैं साथ ही रमदान की दयालु भावना दिखाते हुए तमाम बंधकों की तत्काल रिहाई की पुकार भी लगाता हूं। दुनिया की नजरें देख रही हैं, इतिहास की नजरें देख रही हैं, हम अपनी नजरें नहीं फेर सकते और अधिक मौतों को रोका जाना होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की शांति पुकार। इस बीच यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने गाजा में भीषण स्थिति के बारे में गंभीर चेतावनियां जारी की हैं, जहां लगभग 5,76,000 लोग अकाल के निकट हैं। ये गाजा की लगभग 25% आबादी है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों की एक नई रिपोर्ट में रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन में आम नागरिकों और बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ भयावह दुर्व्यवहार और संभावित युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के तथ्य सामने आए हैं। यूक्रेन पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने अपनी पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें व्यापक स्तर पर और व्यवस्थागत ढंग से इन अधिकार हनन मामलों की जानकारी जुटाई गई है। मानवाधिकार परिषद ने 2 वर्ष पहले इस आयोग की नियुक्ति की थी ताकि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से हुए गंभीर असर का आकलन किया जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन में आम नागरिकों और बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार और संभावित युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के तथ्य सामने आए हैं। आयोग के प्रमुख एरिक मोजे कह रहे थे कि जांच में मिले नए तथ्यों से इस कमीशन की पिछली पड़ताल के निष्कर्षों को मजबूती मिली है, जिनके अनुसार रूसी प्रशासन ने यूक्रेन और रूसी महासंघ में बंदियों को व्यापक स्तर पर और व्यवस्थागत ढंग से यातना दी। यूक्रेन के एक सैनिक और पूर्व युद्ध बंदी ने जांच आयोग को बताया कि हिरासत में रखे जाने के दौरान उन्होंने हर उम्मीद और जीवन जीने की इच्छा खो दी थी। उन्हें बार बार यातना दी गई, हड्डियां व दांत तोड़ दिए गए और एक जख्मी पांव में गैंग्रीन हो गया। भुक्तभोगियों ने जांच आयोग को बताया कि उनके निरंतर बर्बर ढंग से पिटाई की गई, लंबे समय तक हिरासत में रखा गया और मानवीय गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जांच आयोग ने शुक्रवार को जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस बर्ताव से बंदियों को शारीरिक व मानसिक सदमा पहुंचा है जो लंबे समय तक जारी रह सकता है।
हैती में आपराधिक गुटों की हिंसा नियंत्रण से बाहर जाने की वजह से देश में बड़ा मानवीय संकट उपजा है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसियां संकट से जूझ रहे हैती में जरूरतमंद आबादी तक राहत पहुंचाने के कार्य में जुटी हुई है। हैती के प्रधानमंत्री श्री हेनरी ने हाल ही में त्यागपत्र देने की मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद से देश में कई इलाकों में और राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में आपराधिक गुटों की हिंसा में तेजी आई है और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन एजेंसियों ने पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक हवाई पुल तैयार करने की बात कही है ताकि आम लोगों को राहत प्रदान की जा सके। हेती में संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत कार्यालय के अनुसार इस हवाई गलियारे के जरिए हेती तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकेगी और देश के भीतर व बाहर कर्मचारियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को बताया कि इस गलियारे को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। यूएन राहत समन्वय एजेंसी ओचा ने बताया है कि वर्ष 2024 के शुरू से अब तक देश भर में जरूरतमंद आबादी तक सहायता पहुंचाने के मार्ग में अवरोध खड़े किए जाने की 400 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इनमें 70 से अधिक मामले मार्च महीने के पहले सप्ताह में दर्ज किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि हेती में 3,62,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में अब तक कम से कम 75,000 भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2023 में वैश्विक मानव विकास अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, मगर उसके साथ ही संपन्न व वंचित समुदायों के बीच खाई और गहरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस विषमतापूर्ण विकास के कारण सबसे निर्धन देश पीछे छूट रहे हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण को हवा मिल रही है। यूएन विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में लोकतंत्र व्यवस्था के लिए एक विरोधाभास उभरता भी नजर आया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
2023 के लिए मानव विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर देशों का विश्लेषण किया गया है। मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बताता है कि COVID-19 महामारी के बाद धनी देशों में तेजी से विकास हुआ है, मगर विश्व के निर्धनतम देशों में से करीब आधे देश कोविड संकट से पहले के स्तर से भी नीचे लुढ़क गए हैं। इस रिपोर्ट के कुछ अहम निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 2023 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सभी 38 संपन्न सदस्य देशों ने 2019 की तुलना में बेहतर मानव विकास हासिल किया है। मानव विकास प्रक्रिया को सबसे अधिक हानि अफगानिस्तान और यूक्रेन में हुई है। अफगानिस्तान में HDI 10 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि यूक्रेन में ये 2004 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर है। 2020 या 2021 में 35 सबसे कम विकसित देशों में HDI में गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें से 18 देश अभी COVID-19 से पहले के स्तर पर नहीं लौट पाए हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। देना मुझको प्रभु वर तेरी शरण में आया हूँ।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जल जीवन का अनमोल स्रोत है, इस पर चिंतन करते हुए विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर जल के दुरुपयोग पर गहन चिंता व्यक्त की तथा विश्व के जिम्मेदार लोगों का आह्वान किया कि वे नवीन तकनीकियों का सदुपयोग कर जल संसाधन को सबके लिए विकास और शांति का माध्यम बनाएं। शुक्रवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, विशाल वित्तीय संसाधन और नवीन तकनीकियां जिनका उपयोग जल को सभी के लिए जीवन और प्रगति का स्रोत बनाने के लिए किया जा सकता है, दुर्भाग्यवश उनका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है, जबकि वार्तालाप और शांति में निवेश करना आज से पहले कभी इतना जरूरी नहीं था। वैटिकन में जारी चालीसा कालीन साधना के दौरान शुक्रवार को अपने पांचवें प्रवचन में कार्डिनल रानियेरो कांताला मेसा ने संत योहन रचित सुसमाचार में निहित इस धरती पर येसु मसीह के अंतिम उपदेश पर चिंतन किया। योहन रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 6वें पद के अनुसार, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। येसु मसीह के इन शब्दों पर चिंतन करते हुए चालीसाकालीन साधना में भाग ले रहे परम धर्म पीठे धर्माधिकारियों से कार्डिनल ने कहा कि प्रभु येसु मार्ग हैं, वे ही हमारी नियति हैं। उन्होंने कहा, मसीह हमारी यात्रा का मार्ग और गंतव्य है। पिता के शाश्वत वचन रूप में वे सत्य और जीवन हैं तथा देहधारी शब्द रूप में वे मार्ग हैं। उन्हीं का अनुसरण हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए। इस शास्त्री मार्टिन लूथर को उद्धृत कर कार्डिनल ने कहा कि येसु ख्रीस्त हमें पिता ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है जो केवल विश्वास द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर येसु ख्रीस्त जिनसे मिले उन्होंने उनसे कहा कि वे उनका अनुसरण करें और अब वे हमसे यही कह रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करें। कार्डिनल कांताला मेसा ने कहा कि ख्रीस्त का अनुसरण एक असीमित विषय है। यह विषय चौथे सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। येसु का अनुसरण करना लगभग उनमें विश्वास करने का पर्याय है। हालांकि विश्वास करना मन और इच्छा का एक दृष्टिकोण है, रास्ते की छवि विश्वास के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है जो है चलना या अग्रसर होना, अर्थात वह गतिशीलता जो ख्रिस्तीय जीवन की विशेषता होनी चाहिए। मसीह के अनुसरण की विशेषता क्या है और यह किसी भी अन्य प्रकार के अनुसरण से अलग कैसे है, इस तथ्य पर चिंतन करते हुए कार्डिनल ने कहा कि किसी कलाकार, दार्शनिक अथवा विद्वान व्यक्ति के बारे में यह कहना आम बात है कि उसने इस या उस प्रसिद्ध गुरु के स्कूल में प्रशिक्षण लिया, तथापि इस अनुसरण और मसीह के अनुसरण के बीच एक आवश्यक अंतर है जो कि स्वयं संत योहन रचित सुसमाचार की प्रस्तावना के अंत में व्यक्त किया गया है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह से हमें मिला है। उन्होंने कहा कि सभी कैथोलिक धर्म समाजियों और धर्म संघियों को स्मरण रखना चाहिए कि नियम हमें हमारे संस्थापक के द्वारा मिले, लेकिन इस पर अमल करने की कृपा और शक्ति हमें केवल यीशु मसीह से मिली है। इसी प्रकार समान रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्त के सभी अनुयायियों के लिए संत योहन के उन शब्दों का अर्थ और अधिक मौलिक हो उठता है, और वह यह कि सुसमाचार हमें इस धरती पर यीशु द्वारा दिया गया था, लेकिन इसका पालन करने और इस पर अमल करने की क्षमता हमें केवल पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त और उनके पवित्र आत्मा से मिलती है। वैटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार 21 मार्च से बाल्कन प्रदेश के मोंटेनेग्रो की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और स्थानीय कैथोलिक समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकातें कर रहे हैं। यात्रा से पूर्व जारी वैटिकन राज्य सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार 21 मार्च से रविवार 24 मार्च तक बाल्कन प्रदेश के मोंटेनेग्रो की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। बाल्कन प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान महाधर्माध्यक्ष गालाघार मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकातें करेंगे, साथ ही स्थानीय कैथोलिक समुदाय के लिए ख्रीस्त्याग अर्पित करेंगे। बताया गया कि महाधर्माधीश गालाघार की यात्रा मोंटेनेग्रो के विदेश मामलों के मंत्री फिलिप इवानोविच के निमंत्रण पर हो रही है, जिनसे गुरुवार को उनकी मुलाकात निर्धारित थी। शुक्रवार को वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माधीश गालाघार की मुलाकातें गणतंत्र के राष्ट्रपति जाकोव मिलाटोविक, तदुपरांत संसद अध्यक्ष एनरीसा मेंडिक और प्रधानमंत्री मिलोस्को सापिस के साथ निर्धारित हैं। इसी दिन महाधर्माधीश गालाघार परम धर्म पीठ और मोंटेनेग्रो के बीच बुनियादी समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त आयोग के सत्र के उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। 23 और 24 मार्च को महाधर्माध्यक्ष मोंटेनेग्रो के कैथोलिक समुदाय की भेंट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ ने विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि प्रतिदिन 5 वर्ष की उम्र से कम 1000 से अधिक बच्चों की मौत पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हो जाया करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व स्तर पर लगभग 1 अरब बच्चे उच्च या अत्यधिक उच्च स्तर के जल तनाव के संपर्क में हैं। इनमें से 24 करोड़ बच्चे तटीय बाढ़ के अत्यधिक जोखिम में हैं और 33 करोड़ बच्चे नदियों में बाढ़ के कारण अत्यधिक जोखिम में हैं। इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया कि विश्व में 4 में से 1 व्यक्ति के पास पीने के पानी का सुरक्षित प्रबंध नहीं है। इसके अलावा 5 में से 2 लोगों के पास अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता यानी शौचालय आदि नहीं है, और 4 में से 1 के पास बुनियादी जल सुविधाएं जैसे हाथ धोने की सुविधाएं नहीं है। रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि पेयजल या पीने के पानी तक सार्वभौमिक पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता और मानवाधिकार है। सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी की पहुंच सुनिश्चित करने से बीमारियों और मौतों को कम करने में मदद मिलेगी, खासकर बच्चों में, जिसके लिए सरकारों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।